दिन भर 16 अक्टूबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी।
आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पट्टा चेप हो जाएगा, निर्णय जजमेंट रिजर्व हो चुका है, फैसला आना बाकी है।
महाराष्ट्र के चुनावों में प्याज किसानों की परेशानी की धमक।
जो फसल उगाता है उसको कुछ 2 रुपए मिलने को आते हैं तो फिर सब चिल्लाने लगते हैं, प्याज के दाम बढ़ गए, आंखों में आंसू आने लगा, ये होने लगा।
और क्या कनाडा में अपनी कुर्सी बचा पाएंगे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो?
तकरीबन 5 लाख करीब सीख है, उनके लिए ट्रूडो एक बहुत लोकप्रिय नेता है, उनको प्यार से वो जस्टिन सिंह कहते हैं।
सुनिएगा दुनिया जहान, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इस मामले में जमीन के मालिकाना हक पर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन ने कहा है कि जब तक वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते तब तक कोई भी ताकत सीरिया में कुर्दों के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई को नहीं रोक सकती। संसद में अर्दोआन ने कहा कि कुर्द लड़ाकों के हथियार डाल दिए जाने के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। सीरिया में समस्या के समाधान का सबसे आसान रास्ता है, सभी आतंकवादी हथियार डाल दें और हमने जिस इलाके को सेफ जोन घोषित किया है उसे छोड़ दें। अगर मनबिस से लेकर इराक की सीमा तक ऐसा किया जाता है तो हम अभियान को खत्म कर देंगे। जिन लोगों को इस इलाके में रह रहे लोगों की चिंता है उन्हें तुरंत हमारे प्रस्ताव का जवाब देना चाहिए। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन के शब्द। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के भाई हुसैन फेरेदौन को भ्रष्टाचार के मामले में मिली 5 साल की सजा शुरू हो गई है। फेरेदौन को इस महीने रिश्वत लेने का दोषी पाया गया था। राष्ट्रपति रूहानी के समर्थकों का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। फेरेदौन 2017 में गिरफ्तार होने तक राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार थे। 2015 में हुए परमाणु समझौते में भी वो अहम भूमिका निभा रहे थे। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लाम ने इस आरोप को गलत बताया है कि सरकार की नीतियों को लेकर अपने सालाना संबोधन में उन्होंने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया। लाम ने कहा कि अभी मतदान को लेकर सुधारों का सही समय नहीं है। वहीं चीन समर्थक राजनेता निक्सी लाम ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने सीधे प्रदर्शनकारियों की बातों का जिक्र न करके सही किया है। नीतियों को लेकर दिए जाने वाले भाषण में इस बात का जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है। हांगकांग में 4 महीनों के प्रदर्शनों के बाद हमारी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ इसलिए लोगों की निजी संपत्तियों को तबाह कर दिया क्योंकि उन्हें लगा ये चीनियों की है। मंदारिन बोलने या राष्ट्रगान गाने के कारण नागरिकों को पीटा गया। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामले संबोधन में शामिल किए जाने चाहिए। ये थे हांगकांग की चीन समर्थक राजनेता निक्सी लाम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गुरुवार को शुरू होने वाले यूरोपीय संघ के नेताओं के सम्मेलन से पहले ब्रेग्जिट डील पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय संघ और ब्रितानी वार्ताकारों के बीच ब्रसल्स में वार्ता हो रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आयरलैंड के साथ लगती सीमा के मुद्दे पर क्या प्रगति हुई है, मगर ब्रितानी सरकार के सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि इस हफ्ते समझौता हो पाने की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। ब्रिटेन को इस महीने के आखिर में यूरोपीय संघ से बाहर होना है। उत्तर कोरियाई मीडिया की ओर से जारी तस्वीर में देश के नेता किम जोंग उन एक पवित्र पहाड़ पर घुड़सवारी करते नजर आए हैं। कोरियाई प्रायद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट पेक्तू को किम जोंग उन के पिता का जन्मस्थान माना जाता है। सरकारी एजेंसी ने इसे महत्वपूर्ण पल बताया है क्योंकि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने से पहले किम जोंग उन यहां आते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नए शोध में स्पष्ट हुआ है कि अधिक प्रदूषित इलाकों में रहने से आपकी स्मृति को उतना ही नुकसान हो सकता है जितना 10 साल उम्र बढ़ने पर होता है। शोध के मुताबिक याददाश्त कमजोर होने का संबंध नाइट्रोजन ऑक्साइड के उच्च स्तर से हो सकता है जो लोगों के घरों से निकलने वाले धुएं में होती है। इंग्लैंड की वॉरिक यूनिवर्सिटी ने 4,000 लोगों पर शोध करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव। मैं हूं कुलदीप मिश्र। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के पुराने विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। करीब 40 दिनों की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नवंबर में सुनाएगा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और ये राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मसला है। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई पूरी कर ली है। इस बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की। अब सभी को फैसले का इंतजार है। हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा,
23 दिन के अंदर में, आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पट्टा चेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, फैसला आना बाकी है। लेकिन यह आप अवश्य मान के चले कि प्रभु श्री राम की यह भूमि है, प्रभु राम श्री राम के जन्म स्थान के बारे में जो भी फैसला आएगा श्री राम का वहां स्थापना अवश्य है।
उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफर याब जिलानी ने कहा,
हमारा आर्गुमेंट, हमारी एविडेंस, हम उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो सब कोर्ट के सामने प्लेस हो गई। कोर्ट को उस पर तय करना है। हम अपने जो एविडेंस हमारी है, जो लॉ पॉइंट्स हैं, वो प्लेस करने में कामयाब रहे, इतना हम कह सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से कहा है कि वो 3 दिनों के अंदर लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं। उधर आरएसएस के वरिष्ठ नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि ये मामला राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है।
बड़े समाधान की बात है कि कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लेकर उसको निश्चित कंक्लूजन पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कई हिंदू और हिंदू धर्म गुरुओं का दावा है कि बाबर ने भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण किया। उनका मानना है कि भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद स्थल पर हुआ था, इसलिए वे मस्जिद की भूमि के मालिक हैं। मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करता है। आजादी के बाद दिसंबर 1949 में एक रात बाबरी मस्जिद के बीच के गुंबद के नीचे एक मूर्ति रख दी गई थी। तनावपूर्ण माहौल में मस्जिद को बंद कर दिया गया और वहां नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। स्थानीय मुसलमानों ने मूर्ति रखने के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मूर्ति को हटाने की मांग की। बाद में हिंदू पार्टियों ने मस्जिद के स्वामित्व के खिलाफ भी मामला दायर किया। 1990 के दशक में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। 6 दिसंबर 1992 को उसी आंदोलन के तहत अयोध्या में हजारों हिंदुओं की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अभी वहां एक अस्थायी मंदिर है। इस मामले के 3 प्रमुख पक्ष हैं, मुसलमानों की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदुओं की ओर से निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को 3 पक्षों में विभाजित करने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ तीनों पक्ष उच्चतम न्यायालय गए। इस मामले में मध्यस्थता की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस आंदोलन ने देश में हिंदू राष्ट्रवाद को बल दिया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंधों में गहरी खाई पैदा की। भाजपा अपने मैनिफेस्टो में लगातार एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करती रही है। अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, देश की राजनीति पर उसका गहरा असर पड़ेगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई आखिरी सुनवाई पर सबकी नजरें थी। कोर्ट रूम के भीतर आज क्या हुआ, मैंने पूछा वहां मौजूद रहे पत्रकार सुचित्र मोहंती से।
लगभग 4:05 के आसपास सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पीठ फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। उससे पहले राजीव धवन बहस कर रहे थे। राजीव धवन बहस के बाद तुरंत जैसे ही कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। राजीव धवन ने कहा कि मिलॉर्ड आखिरी में बस ये कहूंगा कि हमें आप प्रोटेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला उसके बाद तुरंत सुरक्षित कर लिया। हम ये कहते हैं कि जो अयोध्या वाली मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, 40 दिन लगभग कंजीक्यूटिव हियरिंग हुआ, ये सबसे लंबी, दूसरी लंबी केस चली सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में। नंबर 1 पे था केशवानंद भारती जजमेंट, उसमें भी लगभग 62-63 दिन की हियरिंग हुई। और नंबर 3 पे आपको याद होगा जो आधार की वैधता को चैलेंज किया गया था, उसमें नंबर 3 पे रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक फैसला लगभग 30 दिन के बाद आ सकती है, आप ये मान के चल सकते हैं।
हम ये सुनते हैं कि कोई नक्शा पेश किया गया जिसे राजीव धवन साहब ने फाड़ दिया, क्या ऐसी कोई घटना हुई?
फॉर्मर एडिशनल सोलिसिटर जनरल और ऑल इंडिया हिंदू महासभा के जो वकील थे विकास सिंह, विकास सिंह ने एक किताब का हवाला दिया, किताब का अयोध्या रिविजिटेड नाम की किताब था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया और ये हवाला दिया ये कोर्ट में कहाँ पे चबूतरा था, कहाँ पे रसेजर था, इस किताब में मौत थे कि वो ये बोल रहे थे कि इसको भी आप रिकॉर्ड पे लीजिए, एविडेंस पे लीजिए। लेकिन तुरंत राजीव धवन इसके ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत ये बोला कि इसको रिकॉर्ड पर लेना नहीं मिल चाहिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इस केस को इस तरीके की तर्ज को डिसमिस कर चुका है और इसमें गुस्सा होकर उन्होंने नक्शा या फिर कोई डॉक्यूमेंट था जो कि उन्होंने फाड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट के वहां पे फेंक दिया।
जानकारी दे रहे थे पत्रकार सुचित्र मोहंती। महाराष्ट्र में चार दिन बाद विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। इस बीच नासिक जिले में प्याज के किसानों की नाराजगी एक अहम चुनावी मुद्दे में बदल गई है। नासिक जिले के कई इलाके प्याज का भंडार माने जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यहाँ के प्याज किसान परेशान हैं। उनसे बात की अभिजीत कांबले ने।
एक्सपोर्ट बैन के बाद प्याज की जो दाम है वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पर क्विंटल करीब करीब 700 से 800 रुपए के दाम गिरे हैं, जिस वजह से यहाँ के किसान जो है वो मुश्किल में है। यहाँ पर जो समर में ये प्याज निकाला जाता है और उसको स्टोर करके रखा जाता है, जो इस वक्त मार्केट में लाया जाता है, लेकिन वो जो प्याज है यहाँ अब किसान अपने पास ही रख रहे हैं क्योंकि उसको उनको भाव नहीं मिल रहा है और इसी वजह से ये प्याज अब कुछ हद तक सड़ने भी लगा है। मेरे साथ किसान है यहाँ के एवला तहसील के पिंपल गांव जलाल नाम के गांव के विजय भोरकड़े। विजय जी, ये बताइए कि जो प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है इसकी वजह से आपका क्या नुकसान हो रहा है?
और एक तरफ सरकार बोल रही है कि किसानों ने आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर जब किसानों को 2 रुपये मिलते हैं तब यही सरकार क्या करता है? सरकार कौन सा, वो बीजेपी हो शायद या कांग्रेस हो, जो भी आता है वो यही करता है, ज़्यादा दाम बढ़ने लगे कि बैन कर देते हैं। तो उसके वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमने कांदे जमा करके रखे थे तो उसका प्रॉब्लम ऐसा हो गया, अभी वो भी खराब होने लगे, भाव भी कम कम होने लगे। एक हमको खाली 8-1 दिन के बाजार मिला होगा, बाकी 8 दिन में तो सब कांदे बेच नहीं सकते सब किसान, तो थोड़े थोड़े कांदे बेचे हमने और उसमें भी ऐसा दिक्कत आने लगे कि वो रेट कम हो गया हमारा।
एक जो सरकार की तरफ से दलील दी जाती है उनका कहना है कि जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनके लिए प्याज अगर महंगे हो जाते हैं तो नुकसान हो जाता है उनका, तो उस पर आपका क्या कहना है?
नहीं नहीं, अभी जो जो ग्राहक है उनका तो सही है कि उनको खाने के लिए सस्ते में प्याज मिलनी चाहिए, बात तो मगर ऐसी है कि जो किसान जो खुद खेती करता है, जो फसल उगाता है, उसको काम करना पड़ता है, उसको जो काम करता है उसका दाम नहीं मिलता उसको, तो वो परेशान हो जाता है। तब उसको कुछ 2 रुपये मिलने को आते हैं तो फिर सब चिल्लाने लगते हैं प्याज के दाम बढ़ गए, आंखों में आंसू आने लगा, ये होने लगा।
मेरे साथ दत्तात्रेय जी हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या होना क्या चाहिए?
नहीं, सरकार ने भाव है ना, एक तो एकदम अच्छा मुझे रखना चाहिए कि वो 1500-2000 ऐसा जर भाव दे दिया तो हमको जरा हमेशा के लिए कितना प्याज लगाने का वो उत्तर लगेगा, वो उत्तर पिकाएंगा, तो ऐसा होता नहीं, कभी 200 रुपये बिकता तो कभी 2000 बिकता, 2000 हो गए कि सरकार लगे वो निर्यात बंदी करता है, उसकी वजह से हम इतना परेशान हो गए का मजदूरों को पैसा भी हमारे तरफ से जाते नहीं, तो हमको तो कुछ रहते नहीं नीचे कहीं। एक तर 1500 रुपये भाव सर बांध के दे दिया, जो फिक्स कर दिया था, हम थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे।
नासिक में प्याज किसानों से बात कर रहे थे बीबीसी मराठी सेवा के संवाददाता अभिजीत कांबले। हरियाणा में भी 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और अभी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हमारे सहयोगी पत्रकार सतसिंह इस वक्त कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले रोहतक में हैं। मैंने उनसे पूछा कि हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आती है।
जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है वो ओल्ड रोहतक है, जिसमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट, झज्जर डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, जिसमें करीब 14 सीटें असेंबली सेगमेंट की सीटें आती हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव वाली गलती ना करके लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़े थे और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़े थे। दोनों बाप बेटा अलग अलग सीट पर चुनाव लड़ने की वजह से सारी एनर्जी उनकी डिवाइड हो गई थी। इस बार इन्होंने ये किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद गढ़ी सांपला खिलोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो इनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से लड़ रहे हैं, और इनके बेटे जो कि इक्वली पॉपुलर हैं ओल्ड रोहतक में, वो इन सभी 14 की 14 असेंबली सेगमेंट्स में अलग से कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए। हुड्डा का हरियाणा में जो प्रभुत्व माना जाता है वो इन्हीं 14 सीटों पर माना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सोनीपत में अभी कल ही वो थे, तो सोनीपत में और रोहतक में, तो उन्होंने रैली में और कैंपेनिंग के दौरान ये कह रहे हैं कि लोगों को एड्रेस करते हुए कि अभी तक जो आप 75 पार जो कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है हरियाणा में कि 90 में से हम 75 सीट जीतेंगे, उनका कहना है कि भाई अब हवा पलट गई है और अब कांग्रेस की तरफ को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई बात पिछले 2 दिन से सुनने को मिल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैंपेनिंग के दौरान।
लेकिन कांग्रेस में एक स्पष्ट मतभेद इस चुनाव से पहले और प्रचार के दौरान दिखाई दिया। अशोक तंवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी, तो जो ये नुकसान हुआ था पार्टी को अंदरूनी मतभेदों के चलते और बागियों की वजह से, उस स्तर पर कांग्रेस कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई है?
जब तक टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी तब तक जो बात थी यही सबको दिखाई सुनाई और महसूस हो रही थी कि सभी कैंप जितने भी लीडर हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हो या अशोक तंवर उस समय जिनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट से उनको हटा करके शैलजा को बना दिया गया था, किरण चौधरी हैं जो बंसीलाल की बेटे की बहू हैं, दूसरी तरफ अपना भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, तो सभी कैंप्स में अलग अलग कैंप्स में डिवाइडेड थे। लेकिन जैसे सीटें टिकटें अनाउंस हुई हैं, बाकी सभी के सभी लीडर्स अप अपने काम में अप अपने सीटों को बचाने के लिए लग गए हैं। लेकिन थोड़ा शॉकिंग कांग्रेस के लिए था जब अशोक तंवर ने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया और वो अलग से कैंपेनिंग करने लगे और इनडायरेक्टली वो ये कहने लगे कि जिन्होंने मुझे कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया है उनको मैं हरा के मानूंगा। और आज सुबह 11 बजे की घटना है दिल्ली में, ओम प्रकाश चौटाला है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पड़पोते ने नई पार्टी बनाई है जननायक जनता पार्टी, तो उनके जो लीडर हैं दुष्यंत चौटाला उनको समर्थन उन्होंने दे दिया अशोक तंवर ने। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक अलार्मिंग है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो करीब 5.5 साल तक हरियाणा में मुख्य रहा पार्टी का और वो इस तरह से मुखिया इस तरह से कर रहा है, डैमेज कंट्रोल यहाँ पे कांग्रेस फेल हो गई है।
जानकारी दे रहे थे पत्रकार सत सिंह। 21 अक्टूबर को भारत में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी दिन दुनिया की नजरें होंगी कनाडा के आम चुनावों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है। इन चुनावों को उनके 4 साल के कार्यकाल पर जनमत संग्रह की तरह देखा जा रहा है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। चुनाव में अहम मुद्दे क्या हैं और जमीन पर कैसे हैं चुनावी समीकरण, दुनिया जहान में बता रहे हैं वात्सल्य राय।
दुनिया जहां।
I am for moving forward for everyone.
जस्टिन ट्रूडो की नजर दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और वो कनाडा के वोटरों से एक बार फिर उनके सपनों को पूरा करने का वादा कर रहे हैं। चुनाव मैदान में मौजूद दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले वो खुद को बेहतर बता रहे हैं। ट्रूडो का दावा है कि कनाडा के लिए वो ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं।
We built one of the most progressive platforms in Canadian history.
ये वो वादा है जो अब 47 बरस के हो चुके ट्रूडो ने 4 साल पहले किया था। मतदाताओं का समर्थन उन्हें वैसे ही मिला जैसे 1970 के दशक में उनके पिता पियर ट्रूडो को मिला था और उनकी लिबरल पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। क्षेत्रफल के लिहाज से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं और एक पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की जरूरत होती है। कनाडा में भारत के एम्बेसडर रहे विष्णु प्रकाश वहां की राजनीति पर करीबी नजर रखते हैं।
डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अभी भी ब्रिटिश क्राउन है उनको मानते हैं, क्राउन क्वीन या एक किंग है इंग्लैंड के, वो अपना प्रतिनिधि थ्योरेटिकली अपॉइंट करते हैं जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता है, हालांकि वो प्रधानमंत्री के सुझाव पे ही करते हैं और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जैसे ब्रिटेन की प्रणाली है तकरीबन वही।
साल 2015 में ट्रूडो हवा के ताजा झोंके की तरह आए और चुनावी समीकरण को अपने हक में कर लिया। अपने लुक्स के लिए दुनिया भर में चर्चा पाने वाले चार्मिंग ट्रूडो का जादू प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बना रहा। वो बेटे को लेकर ऑफिस पहुंचे तो सुर्खियां बनी, पतलून के नीचे से मोजे दिखे तो चर्चा हुई, और जब उन्होंने कोई चुनावी वादा पूरा किया तो वाह वाही मिली। कनाडा के सरी में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव विश्वकर्मा कहते हैं कि पीएम ऑफिस में ट्रूडो का हनीमून पीरियड उम्मीद से कहीं लंबा रहा।
लोगों को इतना अंदाजा नहीं था कि ट्रूडो अपने आधे कार्यकाल के बाद भी इतना लोकप्रिय रहेंगे, और उन्होंने शुरुआती कदम कई ऐसे उठाए जिसको लेकर लोगों ने उनको बहुत पसंद किया।
ट्रूडो के मंत्रिमंडल में महिलाओं की खासी नुमाइंदगी ने दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने मारिजुआना से पाबंदी हटाने का चुनावी वादा पूरा किया। कई दूसरे वादे भी उनके एजेंडे में रहे, लेकिन चुनाव सुधार समेत कई अहम वादों को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया। राजीव विश्वकर्मा को सुनिए।
धीरे धीरे ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई, जैसे जो लोग पकड़े गए थे मारियोना के साथ, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि ये सारे मामले धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो जो आपराधिक मामले थे उनको खत्म नहीं किया। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी चुनावी व्यवस्था में सुधार करेंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं जो होंगी वो चुनाव लड़ पाएंगी और आ पाएंगी, लेकिन वो संवैधानिक सुधार जो थे वो व्यवस्था में नहीं हुए।
सऊदी अरब के साथ हुई डील, बिटुमन सप्लाई के लिए पाइपलाइन खरीदने के समझौते और प्रवासियों पर मेहरबानी दिखाने को लेकर भी ट्रूडो विरोधियों के निशाने पर आए। कनाडा की कुल आबादी के करीब 4% लोग इंडिजिनस यानी देशज समुदाय के हैं। ट्रूडो और लिबरल पार्टी उनसे किए वादे भी पूरे नहीं कर सके, और अब चुनाव अभियान के दौरान ट्रूडो के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एंड्रू शियर उन्हें सीधे सीधे धोखेबाज कह रहे हैं।
Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country.
ट्रूडो का भारत दौरा भी विवादों में रहा और इसे लेकर भी उन्हें मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। कनाडा में भारत के एम्बेसडर रहे विष्णु प्रकाश ट्रूडो के कार्यकाल का आकलन करते हुए कहते हैं,
जो ट्रूडो साहब की कमजोरियां हैं, जाहिर है कि आप 4 साल अगर आप सत्ता में होंगे तो कोई ना कोई गलती होगी। ऐसा कोई मैंने नहीं देखा है कि जो 4 साल सत्ता में हो और गलती ना करे, पर उनकी गलतियां जो हुई हैं उसका प्रभाव पड़ा है।
ट्रूडो को भी अंदाजा है कि वोटरों के सामने आई उनकी कमजोरियां चुनाव के गणित पर असर डाल सकती हैं, और इसलिए वो मौके बेमौके माफी मांग रहे हैं।
I took responsibility for the mistakes I've made in the past.
उन गलतियों के लिए भी जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के 1.5 दशक पहले की थी।
I deeply regret that I did that.
लेकिन मुश्किलें हैं कि कम होती नहीं दिख रही। उन्हें घेरने, सवाल उठाने और चुनौती देने वालों में वो चेहरे भी शामिल हैं जो कभी उनके सहयोगी थे, मसलन पूर्व अटॉर्नी जनरल जूडी विल्सन रेबॉल।
प्रधानमंत्री ने बताया कि मुझे कनाडा के जस्टिस मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल की पद की जगह दूसरी भूमिका दी जा रही है।
इस साल की शुरुआत में एक स्कैंडल सामने आने के बाद ट्रूडो ने पहले जूडी का पद बदला, फिर पार्टी से बाहर कर दिया। अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ट्रूडो को चुनौती दे रही है।
हुआ ये था कि क्यूबेक प्रांत की एक कंपनी थी SNC-Lavalin, उस पर एक भ्रष्टाचार का मुकदमा था। उसमें उन जोड़ी ने कहा एक संसदीय समिति को कि वो लोग ये चाहते थे कि किसी भी स्थिति में ये मुकदमा जो है वो ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी अपना मुख्यालय जो होगा वो मॉन्ट्रियल से हटा लेगी, अगर ऐसा हुआ तो वहाँ कई सारे लोगों की, हजारों लोग जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे और इसका असर जो होगा वो चुनाव पर पड़ेगा।
जूडी अब ट्रूडो की राह मुश्किल करने की तैयारी में है। मुकाबले में दूसरे नेता और पार्टियां भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हुए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और विश्लेषकों की राय में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को असल चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी से मिल रही है। ताजा समीकरण की चर्चा करते हुए राजीव विश्वकर्मा कहते हैं,
जो बड़ी पार्टियां हैं वो दो ही हैं जिनके बीच में मुख्य चुनावी मुकाबला है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं की लिबरल पार्टी है और दूसरी पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके हेड कर रहे हैं एंड्रयू शीयर।
कनाडा अमीर मुल्क है, यहाँ की अर्थव्यवस्था गतिशील है, लेकिन वोटरों को भविष्य की चिंता परेशान करती है। टोरंटो जैसे शहरों में घर खरीदना बहुत महंगा है। चुनाव में भी अर्थव्यवस्था, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे छाए हुए हैं। पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश को सुनिए।
बहुत बड़ा मुल्क है, महज 36 मिलियन यानी कि 3.6 करोड़ की आबादी है। जो मिडिल क्लासेज हैं थोड़ा सा वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी इनकम पे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। आमतौर पे कनाडा के चुनाव में विदेश नीति का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ तब पड़ता है कि अगर उनके अमरीका के साथ संबंध अच्छे ना हो, क्योंकि तकरीबन 70-73% उनका जो व्यापार है, उनके संपर्क है, वो सब अमरीका के साथ।
इनके साथ वोटरों के लिए क्लाइमेट चेंज भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
The environment is far more important to me than the economy. I'm going to have to say the environment.
करीब 2 साल पहले पार्टी की कमान संभालने वाले एंड्रयू शीयर इन सभी मुद्दों पर ट्रूडो को घेरने और वादों की झड़ी लगाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं।
Plan for Canadians, lower the cost of living and leave more money in your pocket.
दोहरी नागरिकता रखने वाले शेयर के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं है। नेशनल पोल्स में तीसरे नंबर पर दिख रही वामपंथी रुझान वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के नेता जगमीत सिंह के ताजा रुख ने उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की राह मुश्किल कर दी है।
Oh, absolutely, because we're not going to support a conservative government.
21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के पहले राजनीतिक समीकरणों में आ रहे बदलाव पर नजर रखने वाले राजीव विश्वकर्मा बताते हैं,
ज्यादातर लोगों का मानना ऐसा है कि इन किसी भी पार्टी को बढ़त नहीं मिलेगी। जो तीसरी पार्टी है एनडीपी, उनके जो हेड जगमीत सिंह हैं, उन्होंने अभी हाल में कहा है कि अगर ऐसा रहा कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वो लिबरल पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है।
एनडीपी के नेता सिंह सिख समुदाय से आते हैं और विष्णु प्रकाश बताते हैं कि इस समुदाय का एक बड़ा तबका ट्रूडो को पसंद करता रहा है।
15-16 लाख भारतीय समुदाय है, भारतीय मूल के लोग हैं, उसमें से तकरीबन 5 लाख के करीब सिख हैं। उनके लिए ट्रूडो एक बहुत लोकप्रिय नेता है, उनको प्यार से वो जस्टिन सिंह कहते हैं। और ना केवल वो, पर अनफॉर्चुनेटली कनाडा में तकरीबन सब पॉलिटिकल पार्टी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तानी तत्वों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास गुरुद्वारे का पैसा है और वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके इलेक्शंस के लिए मदद करते हैं।
एक ये वजह भी है कि ट्रूडो अपने कार्यकाल में भारत के साथ उम्मीद के मुताबिक रिश्ते नहीं बना सके। हालांकि रिश्तों की परिभाषा नए सिरे से लिखने के लिए जस्टिन ट्रूडो को पहले वोटरों का भरोसा हासिल करना होगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? जवाब कनाडा के वोटर देंगे। तारीख होगी 21 अक्टूबर।
वात्सल्य राय की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब वक्त है खेल समाचारों का, और खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में मेरे सामने बैठी हैं ज्योतिका सिंह
जी। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज ने अगले महीने भारत में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट और वनडे तथा T20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। उंगली की चोट से जूझने वाले शाई होप को टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है। वहीं टीम में आंद्रे रसेल और क्रिस गेल को जगह नहीं मिली है। इस दौरे के लिए किरोन पोलार्ड को वनडे और T20 टीम की कप्तानी दी गई है। वहीं एकमात्र टेस्ट के लिए जेसन होल्डर की कप्तानी को भी कायम रखा गया है। और अब अगर फुटबॉल की बात की जाए तो आदिल खान के आखिरी क्षणों में किए गए गोल की मदद से भारत ने फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में मंगलवार यानी कल बांग्लादेश को 1-1 से ड्रॉ पर रोका, लेकिन इससे उसके क्वालिफाई करने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कतर के खिलाफ पिछले मैच में गोल रहित ड्रॉ खेलने वाले भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत अब 14 नवंबर को अफगानिस्तान और 19 नवंबर को ओमान से उनकी सरजमी पर भिड़ेगा।
जी बहुत शुक्रिया ज्योतिका। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के भाई हुसैन फेरदौन को भ्रष्टाचार के मामले में मिली 5 साल की सजा शुरू हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन ने कहा है कि जब तक वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते तब तक कोई भी ताकत सीरिया में कुर्दों के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई को नहीं रोक सकती। नए शोध में स्पष्ट हुआ है कि अधिक प्रदूषित इलाकों में रहने से आपकी स्मृति को उतना ही नुकसान हो सकता है जितना 10 साल उम्र बढ़ने से होता है। इसका संबंध नाइट्रोजन ऑक्साइड के उच्च स्तर से है जो लोगों के घरों से निकलने वाले धुएं में होती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर के इस अंक में इतना ही। ताजा तरीन खबरें और विश्लेषण लेकर हम फिर पेश होंगे कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। तो मुझे यानी कुलदीप मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।